हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् प्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा न कामयेना तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव महात्मनान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्ण युतमीशमीवर नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरि परम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 6 जिसका शीर्षक है विश्वरूप की सृष्टि। क्योंकि मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने भगवान की सृष्टि के विषय में, रचना के विषय में प्रश्न किया था, इसलिए अब मैत्रेय ऋषि विदुर जी को भगवान के विश्वरूप की सृष्टि के विषय में बताना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम श्लोक। ऋषि उवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य स प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वर इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम समेत्य स प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वर। शब्दात् ऋषिरुवाच अर्थात मैत्रेय ऋषि ने कहा इति तासाम स्वशक्तिनाम, इति मन इस प्रकार, तासाम मन उनका, स्वशक्तिमान मतलब अपनी शक्ति, सतीनाम इस प्रकार स्थित, असमेत्य अर्थात किसी संयोग के बिना, स यानी वह भगवान, प्रसुप्त यानी निलंबित, लोक तंत्राणाम यानी विश्व सृष्टियों में, निशम्य सुनकर, गतिम प्रगति ईश्वर यानी भगवान। मैत्रेय मुनि ने कहा इस तरह भगवान ने महतत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग ना होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना। तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि जब महत्त्व का प्रारंभ हुआ, महत्त्व जब प्रकट हुए और देवताओं ने जब भगवान की इतनी सारी स्तुति की, तो ये जो भगवान की जो महत्त्व जैसे अपनी शक्तियां हैं, उनके संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यों के विषय में जब भगवान ने सुना, तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में कि भगवान की सृष्टियों में किसी तरह का अभाव नहीं है, सारी शक्तियां वहां ही प्रसुप्तावस्था में रहती हैं, किंतु जब तक भगवान की इच्छा से उनका संयोग नहीं हो जाता, तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। सृष्टि के निलंबित प्रगतिशील कार्य को भगवान के निर्देशन द्वारा ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब क्योंकि पुनः सृष्टि को प्रारंभ करना था, तो ये तभी संभव है जब भगवान दृष्टिपात करेंगे, जब भगवान अपनी शक्ति से उनको पुनर्जीवित करेंगे। तो जब भगवान ने इनके विषय में सुना, तो फिर अब भगवान क्या कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं मैत्रेय मुनि। काल संज्ञां तदा देवीं विवृच्छक्ति शक्तिमरुक्रमां त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युग पदाविशत्। काल संज्ञां तदा देवीं विवृच्छक्तिम् अरुक्रमा त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युग पदाविशत्। काल संज्ञां अर्थात काली के नाम से, तदा उस समय देवी यानी देवी को, अब भगवान काली माता को प्रकट करते हैं, उसके बाद विवृत शक्तिम अरुक्रमा, विवृत मतलब विनाशकारी, शक्तिम यानी शक्ति, अरुक्रमा यानी परम शक्तिशाली। ये जो काली माता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और परम विनाशकारी है। और त्रयो विशत, त्रयो मतलब तीन, विशत मतलब 20 यानी 23 23 तत्वानाम तत्वों को, ग्रणम यानी उन सभी, युगपत एक ही साथ आविशत यानी प्रवेश किया। अनुवाद देखिए, तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। अब भगवान ने बहिरंग शक्ति को प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले दुर्गा देवी या काली माता को प्रकट किया है, और उसके साथ साथ दूसरे 23 तत्व के अंदर भगवान ने प्रवेश किया है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पदार्थ के अवयवों की संख्या 23 है, संपूर्ण भौतिक शक्ति मिथ्याहंकार ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद गंध, यानी ये क्या है, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। और उसके बाद पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये क्या है, ये पंच महाभूत हैं। उसके बाद आँख कान नाक जीभ त्वचा हाथ जीभ त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां, और हाथ पांव गुदा लिंग तथा उपस्थ वाणी तथा मन, ये सब कर्म इंद्रियां। और उसके बाद ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं और कालक्रम में विघटित हो जाते हैं। ये सब जो है वो पहले तो संयुक्त हो जाते हैं यानी दिखते हैं, और फिर जब समय होता है तो ये सब लीन हो जाते हैं। इसीलिए काल भगवान की शक्ति है और यह शक्ति भगवान के निर्देशानुसार अपने ही ढंग से कार्य करती है। यह शक्ति
काली कहलाती है और काली विध्वंसक देवी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व होता है, जो भौतिक संसार में सामान्यतः तमोगुण से प्रभावित लोगों द्वारा पूजित होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी काली देवी के विषय में बता रहे हैं कि ये जो काली है वो विध्वंसक यानी प्रलय करने वाली देवी है और उसका प्रतिनिधित्व करती है यानी विध्वंस करने का, और जो भौतिक संसार में सामान्यतः तमोगुणी होते हैं ऐसे लोग काली देवी की पूजा करते हैं। वैदिक स्तोत्र में यह विधि इस प्रकार वर्णित है। कैसे बताया गया? मूल प्रकृतिर विकृति महदाघ्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। जो शक्ति 23 अव्ययों के संयोग से भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है वह सृष्टि का अंतिम स्रोत नहीं है, भगवान तत्वों में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति काली को व्यवहारित करते हैं। अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों में यही सिद्धांत स्वीकार हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डतया चयायदन्तः अण्डन्तरस्त परमाणुचयान्तरस्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यानी मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान हैं और अपने स्वांश महाविष्णु के द्वारा वे भौतिक प्रकृति में और तब प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात वे क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में पदार्थ में परमाणु समेत सभी तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। विराट सृष्टि के ऐसे स्वरूप ब्रह्मांडों में तथा व्यष्टि परमाणु दोनों में ही असंख्य होते हैं। इसी तरह इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में इस तरह हुई है, अथवा बहुनयतेन किं ज्ञातेन तवार्षुना विष्टव्याहमिदं कृष्णं एकांक्षेण स्थितो जगत। हे अर्जुन, मेरी उन असंख्य शक्तियों के विषय में तुम्हारे लिए जानने की कोई आवश्यकता नहीं है जो विविध प्रकारों से कार्य करती हैं। मैं समस्त ब्रह्मांडों तथा उनके सारे तत्वों में अपने स्वांश यानी परमात्मा के रूप में भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता हूँ। इस तरह सृष्टि का कार्य चलता रहता है। भौतिक प्रकृति के आश्चर्यजनक कार्य भगवान कृष्ण के कारण होते हैं, इसीलिए वे अंतिम कारण या समस्त कारणों के परम कारण हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये संसार में जितने भी तत्व हैं, चाहे वो 23 तत्व यानी 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 महाभूत, मन बुद्धि, और इसके अतिरिक्त जो भी भगवान की बहिरंगा शक्ति है अर्थात काली देवी है जो इस संसार में विध्वंस का कार्य करती है, वो सब जो भी है वो वास्तव में भगवान का ही एक्सपेंट है। भगवान ने ही अपने में से ही इन सबको प्रकट किया है, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो चाहे अंतरंगा शक्ति हो। तो उनका कारण आदि कारण क्या है? सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी बताते हैं हर एक वस्तु का कारण जो है वो भगवान है, कृष्ण है। और यही बात को भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अथवा बहुते न किम ज्ञाते न तवार्जुन। अर्जुन, ये सब के विषय में इतना डिटेल से जानने की जरूरत क्या है?
तुम ये सब इतना डिटेल से जान ही नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे जो विस्तार है उसका तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, इष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश से इस पूरे भौतिक जगत में स्थित होता हूँ और इसको इसके अंदर प्रवेश करके इसको चलाता हूँ। तो तुम मुझे जानो, मुझसे वास्तव में एक बात समझने की है कि समस्त शास्त्रों समस्त वेदों का एक ही उद्देश्य है जो भगवान बताते हैं 15.15 में, वो क्या है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, कि वेदांत का एक ही, वेद का एक ही मकसद है, ज्ञान का एक ही मकसद है कि कृष्ण को जानना चाहिए। जो कुछ भी है वो कृष्ण है, जो कुछ बनाया कृष्ण, जिस जो हर कारण का कारण है वो कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर आगे मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि जब प्रलय होता है तो सारे जीव जो हैं वो भगवान के अंदर आकर सुषुप्त अवस्था में लीन हो जाते हैं, सो जाते हैं, और वो सारा जो संसार है वो जलमयी हो जाता है। और पुनः जब भगवान सृष्टि करते हैं तो क्या होता है, भगवान हर जितने भी तत्व हैं उनके अंदर भीतर में प्रवेश करते हैं और जितने भी जीव हैं वो सब सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में उसी तरह काम में लग जाते हैं जिस तरह जब हम सो जाते हैं तो हम सारे काम छोड़ देते हैं, सो गए और सुबह को उठते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। बस सुबह उठते हैं, सब माँ किचन में चली जाती है, बच्चे जो है वो अपनी यूनिफॉर्म उठाते हैं, काम करते हैं, पिताजी जो है वो अपना ऑफिस की तैयारी करते हैं, कैसे समझो कुछ नया नहीं लगता है, बस सो गए थे उठे। उसी तरह से जीव भी अनादिकाल से जब संसार का लय होता है तो भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं, लीन मतलब सुषुप्त अवस्था में भगवान के अंदर आ जाते हैं और फिर भगवान दोबारा उनको चांस देता है, दोबारा संसार की रचना करता है ताकि अब की बार वो कुछ ऐसा करें कि वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाएं। ये बार बार सृष्टि केवल हमारे भगवत धाम जाने के लिए एक चांस है और हमें उस चांस से लाभान्वित होना चाहिए। परंतु क्या होता है कि हम इसी बहिरंग शक्ति में इतने तो आसक्त हो जाते हैं कि हम अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। और भगवान सदैव ये प्रयास करते रहते हैं, कभी शास्त्र के द्वारा, कभी गुरु के द्वारा, कभी संतों शुद्ध वैष्णवों के द्वारा, कभी अपने नाम के द्वारा, कि जीव जो है वो संसार का आकर्षण समाप्त करके भगवान के प्रति अपने प्रेम को पुनः निर्माण कर सके। तो मैत्रेय मुनि तीसरे श्लोक में कहते हैं, सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टारूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टारूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधनम्। सोनु सोमन वह, अनुप्रविष्टो मैंने इस तरह बाद में प्रविष्ट करते हैं कौन, भगवान, और चेष्टा रूपेण अपने प्रयास काली के रूप में तम यानी उनको गणम सारे जीव जिनमें देवता सम्मिलित हैं, भिन्नम यानी पृथक पृथक, संयोजयाम आस करते हैं कार्य करने में लगाया, किस तरह, सुप्तम कर्म प्रबोधनम, सुप्तम यानी सोई हुई, कर्म मन कर्म, प्रबोधयन यानी प्रबुद्ध करते हैं। अनुवाद, इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर
विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, हर जीव सृष्टि के लय के पश्चात अचेत रहता है और वह भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उनमें ही प्रवेश करता है। ये व्यष्टि जीव पहले से चली आ रही बद्ध आत्माएं हैं, किंतु प्रत्येक भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्माएं बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो हम अनादिकाल से यूं ही बंधन में बंधे हुए हैं और हर बार श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्मा बनने का हमें अवसर प्रदान किया जाता है। उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने का तथा यह पता लगाने का कि भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, वे किस तरह मुक्त बन सकते हैं और ऐसी मुक्ति में परम लाभ क्या है, अवसर प्रदान किया जाता है। ये सब उनको यही अवसर प्रदान करने के लिए कि वो अपने आप के वास्तविक स्वरूप यानी भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में पुनः आकर प्रवेश करें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदों का समुचित अध्ययन करके मनुष्य अपने पद से अवगत होता है और इस तरह भगवान की दिव्य भक्ति करता हुआ क्रमशः वैकुंठ को प्राप्त करता है। ये सारे शास्त्र, सारे वेद, सारी साधना इसीलिए है कि जीव जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवान को प्राप्त करे, भगवान के धाम को प्राप्त करे, अपने वास्तविक अस्तित्व यानी जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, वो कृष्ण का नित्य दास बनकर भगवान के साथ अपने प्रेम को जो भूल गया है, अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गया है, उसको पुनः स्मरण करके पुनः निर्माण करे। तो इसी के लिए भगवान बार बार उन्हें अवसर प्रदान करते हैं। भौतिक जगत में व्यष्टि आत्माएं अपनी विगत अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगी रहती हैं। किसी विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यष्टि आत्मा हर वस्तु को भूल जाती है, किंतु सर्व करुणामयी भगवान जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं, उसे जागृत करती है और भगवान उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं की याद दिलाते हैं। इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। इस अदृष्ट मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के तीन गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। अब जब हमारी मृत्यु होती है, जब एक शरीर समाप्त होता है, हम सुषुप्त अवस्था में भगवान के अंदर सो जाते हैं, तो उस समय हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान तो परमात्मा के स्वरूप में सब याद रखते हैं। तो हमने जो जो इच्छाएं की थी, जो जो कर्म किए थे, वो सब भगवान को तो याद होते, तो उन्हीं के अनुसार दूसरा जन्म मिलता है और उन्हीं के अनुसार हम दोबारा से कामों में लग जाते हैं। यानी पुनः भगवान वो चेतना, वह याददाश्त पुनः प्रदान करते हैं और इसी के अनुसार हम भौतिक बंधन में सदैव बने रहते हैं। लेकिन भगवान हमारे कर्मों के अनुसार भाग्य तो प्रदान करते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें अवसर प्रदान करते रहते हैं। जीव चाहे किसी भी स्थिति में होता है, हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में सदैव चैत्य गुरु के रूप में उसे ये बताते रहते हैं कि ये संसार तुम्हारे रहने के योग्य नहीं है और इसीलिए संसार में ये विध्वंस काली, ये दुर्गा जीव को कष्ट देती रहती है। क्योंकि यदि कष्ट नहीं होगा फिर भगवान कैसे याद आएगा? तो अपने ही वो इच्छाएं जो अधूरी रह जाती हैं, जब जीव उन्हें पूरा भी करता है तो भी
उन्हीं वस्तुओं के द्वारा, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जीव को दुख भोगना पड़ता है, ताकि भगवान उसे ये बताना चाहते, अनित्यम असुखम लोकम, इस संसार में कुछ सुख नहीं है, सब कुछ अनित्य है, इसलिए इस संसार के पीछे भागना छोड़ दो, इस संसार के आसक्ति को छोड़ दो और मेरा भजन करो, मुझे प्राप्त करके अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को आनंदित कर दो। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सृष्टि के अवांछक, सॉरी, सृष्टि के आंशिक या पूर्ण लय के तुरंत बाद जीव की अचेत सुप्त अवस्था को कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं। यानी जो ये आंशिक लय है, तो जब वापस से जीवन इंसान को, मतलब किसी जीव को जीवन मिलता है, तो जो दार्शनिक हैं, जिनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा नहीं है, वो समझते हैं कि बस यही जीवन ही सब कुछ है। ये जीवन सब कुछ नहीं है, ये जीवन तो एक सफ़र है जिसके द्वारा हमको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन जो बुद्धिहीन होते हैं वो क्या करते हैं, सफ़र को ही जीवन समझते हैं और इसी तरह से वो सदैव सफ़र में रहते हैं, है ना, सफरिंग में रहते हैं कि ये सफ़र, ये रास्ता एक दिन ख़त्म करना है और भगवान के धाम तक पहुंचना है, जो हमारी मंजिल है। लेकिन जो सोचते हैं कि ये बस रास्ता ही जीवन है, उसी में आनंदित होना है, उसी में सब कुछ प्राप्त करना है, आगे का नहीं सोचते, वो बहुत मूर्ख होते हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि के पूर्ण विलय के बाद वह लाखों वर्षों तक अचेत रहता है। किंतु जब सृष्टि पुनः जागृत होती है तो भगवान उसे जगाकर पुनः कर्म में लगाते हैं। तो ये दो प्रकार की विलय या प्रलय के विषय में बताया जाता है कि ना आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद, यानी कि केवल कभी कभी ऐसा होता है, सिर्फ हमारा शरीर तो मृत्यु होती है लेकिन संसार अभी तक होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ महीनों तक अचेत रहता है और उसके बाद दोबारा से उसको किसी भी लोक में भेज दिया जाता है। और जब संसार में प्रलय हो जाता है तब तो बहुत सारे लाखों सालों के बाद जब दोबारा संसार की सृष्टि होती है तब भगवान उसे जगाकर दोबारा उसके कार्य में लगा देते हैं। जीव शाश्वत है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव शाश्वत है और उसके कार्य द्वारा प्रकट उसकी जागृत चेतना अवस्था उसके जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। जागृत रहते हुए वह कर्म करना बंद नहीं करता और इस तरह वह अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है। जब उसकी इच्छाएं भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए प्रशिक्षित की जाती हैं तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने के लिए वह वैकुंठ भेज दिया जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने जीव के पूरे जीवन का सार बता दिया कि ना जाने कितने जन्मों से, करोड़ों जन्मों से जीव कभी आंशिक तो कभी वास्तविक प्रलय के बाद, कभी मरता है कभी जिंदा होता है, बार 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 उसे अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन उसकी अपनी अज्ञानता के कारण वो केवल और केवल अपनी इच्छाओं के पीछे ही पागल रहता है, बस अपनी इच्छाएं पूरी करते 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 मर जाता है और उन्हीं इच्छाओं के कारण दूसरा जन्म मिलता है और उसमें भी वही कार्य करता है। लेकिन जब वो उसे प्रशिक्षित किया जाता है, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अब मुझे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी है, बल्कि जब उसकी इच्छाएं भगवान की दिव्य सेवा करने की होती हैं कि अब मुझे भगवान की सेवा करनी है, अब मुझे कृष्ण को खुश करना है, ना जाने कितने करोड़ों जन्मों से अपने आप को खुश करने का केवल मैं प्रयास करता रहा लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब ये इच्छा हृदय में हो जाती है ना, जब एक भी इच्छा जब तक हृदय में बची रहेगी अपने आप की इंद्रिय तृप्ति की, तब तक भगवान का धाम नहीं मिलेगा। भगवान बोलेगा करो, जितना अपने आप को खुश करने का प्रयास करना है करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब ऊब जाओ, थक जाओ, जब तुम्हारे हृदय में केवल एक इच्छा बचेगी ना कि आप मुझे कृष्ण को खुश करना है, फिर मैं तुम्हें अपने धाम में ले जाऊंगा, जहां पर कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कष्ट नहीं, केवल मेरा प्यार है, केवल मेरा आशीर्वाद है, केवल तुम्हारे लिए आनंद ही आनंद है। उस धाम में मैं तुमको लेके जाऊंगा। लेकिन उसके लिए जीव को अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा को बढ़ाना होगा, और तभी भगवत धाम प्राप्त हो सकेगा।
प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशित क्षितिको गण प्रेरितौ जन यत्स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषम्। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशितिको गण प्रेरितौ जन यत्स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषम्। प्रबुद्ध कर्म, प्रबुद्ध यानी जागृत, कर्म यानी कार्यकलाप, दैवेन अर्थात ब्रह्म की इच्छा से, त्रय त्रयोविंशतक यानी 23 प्रमुख अव्ययों द्वारा, गण यानी सम्मेल, प्रेरित यानी द्वारा प्रेरित, अंज अजयन अर्थात प्रकट किया, अजनयत यानी प्रकट किया, स्वाभि यानी अपने, मात्रा भी यानी स्वांश से, अधिपुरुषम यानी विराट रूप यानी विश्वरूप को। अनुवाद, जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ। अनुवाद, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विराट रूप या विश्वरूप जिसकी निर्विशेषवादी बहुत बड़ाई करते हैं, वह भगवान का नित्य रूप नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो भगवान का स्वरूप है, साकार स्वरूप है, उसमें से विराट स्वरूप जो है वो प्रकट हुआ है। तो जो निर्विशेषवादी है वो सब निराकार को ही मानते, तो भगवान, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो नित्य नहीं है, वो प्रकट होता है, फिर भगवान उसको वापिस से प्रच्छन्न कर देते हैं। तो यह भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अव्ययों के बाद प्रकट किया जाता है। 23 तत्व प्रकट हुए उसके बाद, जैसे यहाँ साफ साफ प्रबुद्ध कर्मा देवे न त्रैविशतको गणा, उसके बाद ये 23 तत्व के बाद ये भगवान का विश्वरूप प्रकट होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह विराट या विश्वरूप निर्विशेषवादियों को यह विश्वास दिलाने के लिए दिखलाया कि वे ही आदि भगवान हैं। तो ये विश्वरूप दिखाना, पहले तो कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया लेकिन अर्जुन को बाद में दिखाया, ताकि लोगों को पता चले, जो निर्विशेष हैं उनको ये पता चले कि ये भी भगवान का ही स्वरूप है। और फिर निर्विशेष जो है वो भगवान से प्रकट हुआ, और फिर बाद में भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया था, ऐसा नहीं है कि विराट रूप द्वारा कृष्ण प्रकट हुए। पहले तो कृष्ण थे, उन्होंने प्रकट किया, तो इसका मतलब है वो भगवान का ही एक स्वरूप है। तो इसलिए विराट रूप भगवान द्वारा वैकुंठ में प्रकट किया गया नित्य रूप नहीं है, भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये तो बस जो निर्विशेषवादी है उनको दिखाने के लिए के वो भगवान की सत्ता को माने, भगवान एक उनको अवसर प्रदान करते हैं कि देख लो ये निराकार, ये जो विश्व स्वरूप है वो भी मेरे अंदर से ही आया है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इसलिए विराट रूप भगवान द्वारा वैकुंठ में प्रकट किया गया नित्य रूप नहीं है, यह भगवान का भौतिक प्राकट्य है। नव जिज्ञासुओं के लिए मंदिर का अर्चा विग्रह भगवान का ऐसा ही प्राकट्य है, किंतु भगवान के विराट तथा अर्चा रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप से अभिन्न है। तो भले ही वो भौतिक हो, लेकिन फिर भी भगवान के ही स्वरूप हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। और जिस तरह से भगवान का अर्चा विग्रह है, देखने में क्या लगता है कि ये पत्थर से बना हुआ है या पीतल से बना हुआ है, लेकिन वो भगवान का ही स्वरूप है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मंदिर का अर्चा विग्रह भगवान का ऐसा ही प्राकट्य है। भगवान से भगवान तो पहले हैं, लेकिन फिर वो इस विग्रह में प्रवेश करते हैं। तो भगवान के विराट तथा अर्चा रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप हैं, यानी वो साक्षात भगवान के ही समान हैं। तो यहाँ तक हम आज रखते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है ये टॉपिक्स हम एज इट इज़ श्रील प्रभुपाद जी जिस तरह लिख रहे हैं उनको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो गुरु महाराज हमको, और साथ साथ में जब हम चैंटिंग करते जाएंगे तो भगवान और गुरु की कृपा से हमको वास्तविकता समझ में आती जाएगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।